देखिए वर्स 41 यहाँ पे उन्होंने बोला है, मैं पहले दो तीन लाइंस पढ़ लेती हूँ. देर आर थ्री एंटिटीज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग. जब हम कुछ भी जानते हैं तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, द नोअर, द नोन एंड द मीडियम ऑफ नोइंग. द नोअर हु नोज द ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग एंड द इंस्ट्रूमेंट और मीडियम थ्रू विच नोइंग हैपेंस. बस अभी हम यही रुक जाएंगे, अब हम बुक में नहीं देखेंगे, ठीक है. अब इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है. देखो जब भी हम कुछ भी जानते हैं वहां पे तीन चीजें रहती हैं. पहला क्या है, जिस चीज को जाना जा रहा है, ठीक है. फिर एक है जानने वाला, और एक है कोई तो माध्यम होता है जिससे जानने वाला उस वस्तु को जानता है. अब देखो, अब आप सामने अपने लैपटॉप या मोबाइल में देख रहे हो, है ना. तो जानने वाला क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है, जो नोन है, वो क्या है, आपका मोबाइल या लैपटॉप, ठीक है, वो है. और मीडियम क्या है, आप कैसे जान रहे हो, आप देख रहे हो, तो अभी आपको जानने वाली क्या है, आपकी आंख, है ना. तो आंख हो गई मीडियम. और कौन जान रहा है कि ये है, वो है आपकी इंटेलेक्ट, ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट और एक जानने वाला और बीच में जो मीडियम है, ये क्लियर हुआ. मोबाइल, आंखें और आपकी बुद्धि. अब जैसे कि उन्होंने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ये ताली बजाई, ठीक है, ताली बजाई तो एक आवाज हुई. अब ये आवाज है ऑब्जेक्ट जिसको जाना जा रहा है, नोन, द ऑब्जेक्ट विच इज नोन. और कौन जान रहा है, कान, है ना, कान में आवाज आई, कान सुन रहा है. और मतलब मीडियम जो है, और जान कौन रहा है, इंटेलेक्ट, बुद्धि जान रही है, ठीक है. तो ऐसे ही हम कोई भी चीज देखें, अगर मैं अभी एक आम खाती हूँ तो जाना जा रहा जो ऑब्जेक्ट है वो होगा आम, जो जान रहा, जिसके थ्रू जाना जा रहा है वो होगी जीभ, और जानेगा कौन, बुद्धि जानेगी कि ये आम खाया गया है. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, इज दिस क्लियर, तीनों चीजें, ठीक है. अब देखिए, अब क्या होता है, अब समझने वाली बात क्या है. पहला स्टेप क्लियर हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हम देखते हैं इसमें कि वो सेम रहता है, जानने की इंद्री भी सेम रहती है, लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो क्या जान रही है वो बदल सकता है ना. अब जैसे सपोज एक हमने, सपोज अभी हम लोग इकट्ठे होते और हमने बिरयानी कहीं से ऑर्डर की होती कि हम लोग सब मिलके बिरयानी खाएंगे लंच में, ठीक है. अब बिरयानी तो एक ही है, एक ही बिरयानी है जो हम लोग सब खाएंगे, तो ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है. फिर हम लोग सब खाएंगे तो हम कैसे जानेंगे उस बिरयानी के स्वाद को, जीभ से. तो जीभ यहाँ पे चाहे अलग अलग है पर फिर भी चलो स्वाद आ रहा है. अब हम में से कोई बोलेगा अरे वाह बिरयानी बहुत बढ़िया है ना, कोई बोलेगा ज़्यादा अच्छी नहीं है बिरयानी, मज़ा नहीं आया खा के, कोई बोलेगा हाँ ठीक थी, मतलब ना बहुत अच्छी थी ना बुरी थी. अब बिरयानी वही है ना, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन जो उसको मतलब नोन वही है, लेकिन जो जानने वाला है वहाँ पे सबका अलग 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 हो सकता है ना. जैसे कोई एक इंसान होगा, आप बोलोगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, और दूसरा बोलेगा अरे ये तो मेरा दुश्मन है. तो ऑब्जेक्ट सेम होते हुए भी, the known, the object is the same, but it becomes different for the knower. Object भी वो हो सकता है, उसको जानने की instrument भी same हो सकती है. मतलब हर एक, जैसे एक sound सुना, suppose classical music लगाया, है ना, आप सबके कान classical music सुन रहे हैं, सुनने वाले कान भी in a way हम बोल सकते हैं instrument same है ना, सबके कान ही सुन रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि किसी की आँख सुन रही है, किसी की नाक सुन रही है, सबके कान सुन रहे हैं और वो same instrument आ रही है, लेकिन किसी को वो म्यूजिक अच्छा लगेगा, किसी को बहुत खराब लगेगा और बोरिंग लगेगा, ठीक है. ये दो चीजें क्लियर हो गई कि चीज वो होते हुए भी हम उसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, है ना. और जब भी किसी चीज को जाना जाता है तो ये तीनों चाहिए, ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड. हम ऐसा नहीं कर सकते इनमें से अगर हम एक को भी निकाल दें तो हम जान नहीं सकते. जैसे कि सपोज अगर आप सोए हुए हो, ठीक है, आप सो रहे हो और वहाँ पे आपके कमरे में लेट्स से आपका हस्बैंड आए, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट तो आया वहाँ पे आया, और आपके आंखें भी हैं लेकिन बंद हैं, है ना, और आप सोए हुए हो, इंटेलेक्ट भी, तो ऑब्जेक्ट होते हुए भी उसको जाना नहीं गया, है ना। फिर हम एक और एग्जांपल करते हैं, आप लोग सब अपनी आंखें बंद कर लो, सब आंखें बंद करो। अब मैं कुछ कर रही हूं लेकिन आप जान पा रहे हो, नहीं जान पा रहे, है ना, क्यों? खोल लो अब, क्योंकि आपकी आंखें बंद है। तो अगर जो मीडियम ना हो, जो देखने वाला है, जो भी जानने वाले का जो माध्यम है वो ना हो, तो आप नहीं जान सकते उस चीज को, है ना। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा कुछ जानने को, तो वैसे ही जानोगे ही क्या, तो समझ गए। तो कभी भी हम कोई भी चीज जानते हैं उसमें हमें तीनों तीनों चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे होता है। फिर वो इसको और उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमारी ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं कि चीज तो वही रहती है जो हमने बोला, जो ऑब्जेक्ट है जानने वाला, लेकिन हमारी जो इंटेलेक्ट है वो उसको कैसे इंटरप्रेट करती है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं। जैसे ना हम लोग एक मैं करती थी कॉर्पोरेट में, एक वर्कशॉप करती थी, उसमें हम लोग ये कराते थे एक्सरसाइज कि सपोज किसी का एक मर्डर हुआ, आपको एक आपने खबर, लेट से कोई बहुत फेमस पर्सन का मर्डर हो गया, ठीक है, लेट से कोई एक्टर का जो बड़ा फेमस है। अब आप देखो उसके इंटरप्रिटेशंस कितने अलग अलग हो सकते हैं हर एक के लिए। मर्डर तो उसी बंदे का हुआ है, एक फेमस पर्सन का, एक ही बंदे, एक ही मर्डर है, आप उस जानोगे कि हाँ मर्डर हुआ है, कैसे जानोगे, न्यूज में सुनोगे, अखबार में पढ़ोगे, कुछ भी होगा, लेकिन सबके रिएक्शंस अलग अलग होंगे, है ना। जो प्रेस मीडिया वाले होंगे उनको तो एक न्यूज के लिए बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी कि चलो अब ये शुरू हो गया, है ना। अगर सपोज जो प्रोड्यूसर है जिसकी मूवी वो में एक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा कि अरे कितना लॉस हो गया, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके। अब सपोज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो मर्डर की वजह से उस एरिया में कर्फ्यू लग गया, क्योंकि इतना लोगों ने शोर मचा दिया, कुछ हो गया, तो जो बच्चे हैं स्कूल वाले उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, तो वो उसी चीज को एक अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे, है ना। तो एक ही चीज होती है, ऑब्जेक्ट सेम रहते हुए भी एक ही ऑब्जेक्ट में हर एक के रिएक्शंस अलग होते हैं। और फिर क्या होता है, हम लोग पता है कैसे करते हैं जज, अरे वो देखो कैसे बिहेव कर रहा है इस चीज को, उसको क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या लगता है कि जैसे हमने उसको देखा दूसरा भी वैसे ही देखे, ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी हम कोई चीज होती है, हमें लगता है सपोज हमने किसी को कोई चीज ही दिया, हमें लगता है हम बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, पर हो सकता है दूसरे को ना पसंद आए, तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि मैं ऐसी चीजें सुनती हूँ, ऐसा होता है कि अरे हमने तो इतने अच्छे से उसको दिया था, उसको तो अच्छा ही नहीं लगा, उसको तो ये चीज भी नहीं पसंद आई, या उसको तो हमारा खाना नहीं अच्छा लगा, या ये हो गया, जो भी, वॉट एवर इट इज, है ना। आप लोग समझ गए बात, ठीक है। इसमें कोई डाउट कि हमें तीनों चाहिए कुछ भी जानने के लिए, और एक भी ना हो तो हम उसे नहीं जान सकते, और फिर सेम ऑब्जेक्ट होते हुए भी जो इंटेलेक्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करेगी वो हमारा बदल जाएगा, और उससे हम सबका संसार बदल जाता है उस इंटरप्रिटेशन से। देखो यहाँ पे भी एक ही फैमिली के दो लोग एक चीज को अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे, तो अभी जो हम बोल रहे थे हमारा चित्त ही हमारा संसार निर्मित करता है, तो हो गया ना आपका संसार अलग, आप एक चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो आपका वर्ल्ड डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहां पे किसी ने आके चिल्लाया, जैसे सपोज चलो यहाँ पे आके कोई आके चिल्लाए, रेनू तुमने मुझे धोखा दिया, ओके। तो अब रेनू सोचेगी अरे मैंने तो किसी को कुछ धोखा नहीं दिया, मैंने क्या किया, तो फिर अगर बोले नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, किसी और रेनू की बात कर रहे हैं, तो फिर रेनू होगी हाँ अब ठीक है ना। तो जहां आपने ये इंटरप्रेट किया कि ये मेरे बारे में बात की जा रही है, पर्सनल है, तो आपका रिएक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन जहां आपको पता लगेगा कि नहीं ये मेरे बारे में नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, तो आपका वहीं पे इंटेलेक्ट शांत हो जाएगी, फिर आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। इसका एक और एक स्टोरी आती है, कहते हैं कि जैसे एक आदमी था, उसको किसी ने बताया शॉप पे काम कर रहा था, अरे तुम्हारे घर में आग लग गई है, ओके। जैसे उसको पता लगा कि मेरे घर में आग लग गई है, ऑब्वियसली सब कुछ डिस्टर्ब हो गया वहाँ पे, है ना, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, और वो भागा जा रहा है घर, उसको कुछ नहीं पता रास्ते में कौन दिखा कौन नहीं दिखा, क्या आया क्या फोन आए, पूरा दिमाग। लेकिन जब घर पहुंचा तो पता लगा उसके घर में आग नहीं लगी थी, उसी नाम के किसी और घर में आग लगी थी, ओके, तो जैसे ही वहां पहुंचा तो एकदम शांत हो गया। ठीक है, अब हम इससे क्या सीखते हैं, हम इससे क्या, हाउ कैन वी अप्लाई दिस इन आवर लाइफ। हम इस चीज को, हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन इसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हैं, हम इससे क्या सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कह, जो मेरा एक पॉइंट है एग्जैक्टली जो मेरे दिमाग में है ऑब्वियसली, कि जब हम ये जानते हैं कि कोई भी एक चीज हर कोई अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा, अब हम सिंपली इसी पॉइंट पे आते हैं, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हर कोई अलग तरह से इंटरप्रेट करता है, तो इसका मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन किस पे बेस्ड है, जो मैंने माना है, जो मैंने समझा है ना, लेकिन इसका मतलब है कि वो इंटरप्रिटेशन भी सही नहीं है, कोई सही या गलत इंटरप्रिटेशंस नहीं होते हैं, है ना, और अगर मेरा इंटरप्रिटेशन से मुझे परेशानी होती है, मुझे दुख होता है, जैसे चलो मेरा घर जल गया, ठीक है, अगर मैंने सुना, ऑब्वियसली ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द दुनिया के लिए को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा घर जल गया, है कि नहीं, हो सकता है किसी को खुशी होगी, कोई सोचेगा अरे इसका घर जल गया, चलो अब हमारे पास नया चांस है कि हम यहाँ पे इसका यू नो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे पास बिजनेस मिलेगा, कोई ऐसा भी तो सोच सकता है ना अपने सोच से, किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा भी होता है ना, समझ रहे हो इस बात को, तो अगर कोई भी जब मेरा मन किसी चीज को ऐसे इंटरप्रेट करता है जहाँ पे मुझे परेशानी होती है इमिजिएटली, आप अपने इंटरप्रिटेशन को उस समय बदल सकते हो, जस्ट ट्राई दैट। मैं तो बात कर रही हूँ सिर्फ कि हम कैसे एक सिचुएशन को भी यूज कर सकते हैं, कि मैं कैसे, क्या मैं अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर बदल सकती हूँ, कैन आई जस्ट चेंज माई इंटरप्रिटेशन, कैन आई लेट गो ऑफ इट, बिकॉज टू 99% पीपल इट डजेंट मैटर वॉट हैज हैपेंड, सो दैट मीन्स इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट किसने बनाया है, मैंने उसे इम्पॉर्टेंस दे के इम्पॉर्टेंट बनाया है, है कि नहीं, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, और यहाँ पे तो ये होता है ना, अरे किसी के, जिसमें हमेशा बोलती रहती हूँ, खाना खाने गए, अरे खाना अच्छा नहीं था उनके घर का, इज इट अ बिग डील, मतलब यू मेक अ बिग डील आउट ऑफ दोज थिंग्स ना, हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगा हो, उसमें न्यूट्रल रहो ना, चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मतलब देर आर 99 थिंग्स जिसपे हमें रिएक्ट करने की, जिसके बारे में हमें कॉमेंट करने की, जिसके बारे में हमें जज करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इजंट इट। जब हम ये जान जाएं कि मैं जजमेंट दे भी दूं, यार ये तो बहुत अच्छा था, या ये तो बहुत खराब था, या ये तो ऐसा था, उससे क्या होता है, इट इज जस्ट मेरा इंटरप्रिटेशन, दैट्स इट, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स। तो ये आप ट्राई करना, ये मैंने किया हुआ है, एक बार आप समझो तो बहुत हेल्प करता है, आप उसी समय अपने माइंड को ना एक ब्रेक दे देते हो, क्योंकि माइंड का तो काम है, अगर आपने उसको एक चीज पकड़ा दी वो तो उछल उछल के पता नहीं फिर राय का पहाड़ बनाएगा, आप उसको वहीं पे ब्रेक कर दो कि भैया तुम ये जो लगे हो ना इंटरप्रेट करने में, हजार लोगों के हजार इंटरप्रिटेशन होंगे, तुम्हारे इंटरप्रिटेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डोंट गिव इट इम्पॉर्टेंस, आपको अपने माइंड के इंटरप्रिटेशन को इम्पॉर्टेंस नहीं देना है, ये सीखना है।
इसी जगह एक सवाल है, मतलब वो इससे कंसर्निंग नहीं है अपने सब्जेक्ट से, लेकिन आपकी बात से मुझे ध्यान आ रहा है, इसका क्या इलाज है कि अगर आपने जैसे कुछ कहा, बड़े पॉजिटिव वे में कहा, नेगेटिव जैसे भी आपने कहा, उसके 100 इंटरप्रिटेशन क्यों आते हैं, वो जिस इंसान भाव से कह रहा है वही भाव क्यों नहीं समझ में आता है, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि मन अलग है सबके, सबका संसार अलग है, देखो यहीं पे इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आपका संसार आपके चित्त ने क्रिएट किया हुआ है ना, तो आपने ऑलरेडी अलग अलग जो आपने इंटरप्रिटेशंस दिए हुए हैं उसी के बेसिस पे ही आप अगला इंटरप्रिटेशन भी दोगे, है ना, कोई नया इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, समझ रहे हो बात?
सिंपली ये बात है कि जिस तरीके से आप किसी बात को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या आपने जैसे अभी कुछ चीज हम लोगों को समझाई, क्यों ना हम उसी भाव से उस चीज को समझने का प्रयास करें, अपना उसमें एक नया क्लॉज ला करके और एक नई चीज बना करके, तो वो तो बड़ा अजीब सा, मतलब ऐसा नहीं ऐसा हो सकता ना, बनाए नहीं सब लोग अपने अपने आप,
पर ऐसा ही है, वो सिर्फ तब होता है, देखिए सिर्फ एट द लेवल ऑफ सेल्फ सब एक होता है, वहां पे कोई मिस इंटरप्रिटेशन का, मिस कम्युनिकेशन का स्कोप नहीं होता साइलेंस में, है ना, तो अदरवाइज तो अलग, वही जैसे अब देखो गीता है, भगवत गीता, कोई भी आप ले लीजिए पुराण, हर किसी ने जो इंटरप्रेट किया है वो अलग तरीके से किया है, इसको पढ़ने वाले जब कमेंट्री करते हैं वो भी अलग तरीके से करते हैं, सुनने वाला भी इसको अलग तरीके से समझता है ना।
तो इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रेडिक्ट भी हो जाता है, मतलब कोई उसी चीज सेम चीज को कोई किसी तरीके से कर और कोई बिल्कुल उल्टी तरीके से कर लेता है। अब वो उल्टा है कि हम उल्टे हैं, वो तो एक
फर्दर वो है,
कोई भी उल्टा नहीं है। लेकिन बिल्कुल मैसिव डिफरेंस आ जाता है तो कंक्लूजन नहीं निकल पाता है उस चीज का, कभी कभी ऐसा होता है।
नहीं नहीं बिल्कुल होता है, कभी कभी नहीं, ये बहुत होता है। वही तो हम बोलते हैं ना, आप क्या बोल रहे हैं, आपने क्या बोला, दूसरे ने क्या सुना, उसने क्या समझा, ये तीनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। तो मिसकम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे, मतलब सबसे बड़ा एक इशू रहता है हर जगह पे। अब देखो ना, फैमिलीज में भी क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स उठाइए फैमिलीज में, आपको पता लगेगा कम्युनिकेशन इश्यूज है सारे। आप क्या बोल रहे थे, वो क्या समझ रहे थे, आपने ये समझा, उन्होंने क्या बोला, इसी में ही टाइम निकल जाता है। फिर भी नहीं समझ, और फिर डिस्कस करते हैं ना, तब भी नहीं समझ पाते
नहीं समझ पाते हैं डेफिनेटली,
तब कुछ और कंफ्यूजन हो जाता है,
पूरी शक्ति खत्म हो जाती है समझाने में, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ सकता है,
नहीं आता।
माइंड गेम है, माइंड गेम, माइंड सेट
ऐसा ही है। और इसका देखो उन्होंने आंसर यही दिया है, क्योंकि सबका संसार अलग है। देखो अब जैसे हम आत्मा, अगर हम एक शब्द ही बोलते हैं आत्मा, है ना, अब जितने लोग हैं उस आत्मा का मतलब अलग अलग समझते हैं, है कि नहीं। कोई भी आप शब्द एनलाइटनमेंट के सबके अलग मतलब हैं, काउंसलिंग कोई भी आप, वर्ड लव, एवरीबडी थिंक्स ऑफ इट इज डिफरेंट, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, इजंट इट। तो यही है, ये माया का खेल ऐसा ही है जिसमें बहुत सारी अत्यंत संभावनाएं हैं, है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो
अब ऐसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अब ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जिसमें लाइक माइंड होते हैं, जो बात जो कहे वही समझे, ऐसा कुछ अलग अलग कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसा मतलब सेग्रीगेट हो, भाई समझ जाए, इससे कहेंगे तो समझ जाएगा, उससे कहेंगे तो नहीं समझेंगे।
जब आप अपने आत्मन को जान जाएंगे, जब आत्मज्ञान हो जाएगा, फिर एक ही उस पे आ जाएंगे, फिर जो बोला जाएगा वही समझा जाएगा। क्योंकि देखो साइलेंस, साइलेंस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, है ना, साइलेंस अगर हमने, लेकिन अगर हम एक सेंटेंस भी बोलते हैं तो सब अलग हो जाता है। तो देखिए ये जो मिसकम्युनिकेशन, मिसइंटरप्रिटेशन चलता ही रहेगा, और ये बात है ही, आप कितना भी समझाओ दूसरा वही समझता है जो उसका माइंडसेट है, जो उसके चित्त में है, उसके हिसाब से ही चीज समझी जाएगी, है ना। हाँ, तो अब हमें क्या सीखना है यहाँ पे, कि अगर एक चीज के 1 करोड़ 10 करोड़ इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं इंटेलेक्ट पे, तो क्यों ना मैं भी वैसा इंटरप्रिटेशन करूं जिससे मैं शांत रहूं, ये मन शांत रहे, बजाय कि मन डिस्टर्ब हो। तो आप अपने इंटरप्रिटेशन को, जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो सामने, अपने हिसाब से बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आपके माइंड ने एक इंटरप्रिटेशन कर लिया तो आपको वैसा ही लेना है। अब जैसे मुझे तो बार बार उसी का ध्यान आता है, जैसे ये सुशांत सिंह राजपूत का जब वो सुसाइड हुआ था, अरे बाप रे, इतना पागलपन, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है सुन के, और फिर वो देख रहे हैं, अच्छा मतलब लोगों को क्या लगता है, दैट इज द राइट वे, कि डिप्रेशन में जाना है, एंग्जाइटी होनी है, ये कर रहे हैं, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। कौन इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कौन इसको बढ़ा रहा है, अगर आप उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हो, अगर आप सोचो हाँ यार ये हुआ, हो गया, होता है, छोड़ दो ना, वहीं का वहीं खत्म कहानी, एक सेकंड में आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर पकड़ लोगे तो आप उसका पहाड़ बना लीजिए, फिर तो कोई एंड नहीं है उस चीज का। तो फिर इन्होंने देखो जैसे बोला है, द ऑब्जेक्ट इज द सेम, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, डज नो, ये हमने पहले भी किया था, दैट ऑब्जेक्ट्स डोंट गिव यू प्लेजर और पेन, है ना। ऑब्जेक्ट में जो जिस चीज को जाना जा रहा है उसमें सुख दुख नहीं है, सुख दुख कौन कर रहा है, आपका माइंड उसको, आपकी बुद्धि आपको इसे इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है ना। जो ये पूरा संसार है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपको जानने के लिए। अब हमने पहले एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा संसार भी एक ऑब्जेक्ट ही है, इसमें जितनी चीजें हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसमें सिर्फ वस्तुएं नहीं आती, उसमें लोग भी आते हैं, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट्स और वेदर इट इज पीपल, पोजेशंस, एनीथिंग, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इवन आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो विचार हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, पूरा संसार, चाहे वो बाहर का या अंदर का, वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। और फिर वो कहते हैं लास्ट में, देखो अब आई आत्मबोध वाली बात, जो इवेंचुअल जो बॉटम लाइन आती है, इतना सब समझाने के बाद वो क्या बोलते हैं, ये जो जान रहा है, जो माइंड इंटेलेक्ट, ये भी सिर्फ रियल सेल्फ की लाइट में ही जान पा रहा है ना। हमने पहले क्या बोला, ये फोन है या लैपटॉप है, ये मेरी आंखें इसे देख रही हैं और ये इंटेलेक्ट जान रही है कि ये लैपटॉप है। अब हम और पीछे आ रहे हैं कि ये जो जानने वाला है, ये किसके प्रकाश में कार्य कर रहा है, उस आत्मन के प्रकाश में, उस सेल्फ के प्रकाश में, है ना। उसके बिना ये तीनों भी, ये सब कुछ, ये भी एकदम जड़ है, चैतन्य नहीं है। चैतन्य सिर्फ और सिर्फ सेल्फ है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। उस ब्रह्म की रोशनी से ही बाकी सब कुछ चैतन्य हो रहा है। फिर वो कहते हैं, देखो, नोअर, नोन एंड मीडियम ऑफ नोइंग आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो जान रहा है, जो जाना जा रहा है और जिसके थ्रू जाना जा रहा है, वो तीनों अलग 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 चीजें हैं, है ना। इतना तो हम समझ गए, तीनों अलग हैं। लेकिन शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये जो सेपरेटनेस है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये रियल सेल्फ में, आत्मन में, ब्रह्मण में नहीं है। ओके, माइंड, इंटेलेक्ट, कॉग्निटिव सेंसेस एंड द एंटायर वर्ल्ड, नन ऑफ दिस एग्जिस्ट्स इन द रियल सेल्फ। आत्मन और ब्रह्मन में ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे, हम माया में ही बात कर रहे थे। जैसे ही हम सेल्फ पे आते हैं, खत्म, ये तीनों है ही नहीं उसमें। क्योंकि जो आत्मन है, वो ना तो मन और बुद्धि है, ना इंद्रियां है, ना ये संसार है। आत्मन कौन है, जो हमेशा सर्वत्र, हमेशा आनंद में है, जो हमेशा है, था, है और रहेगा। एवर कॉन्शियस, एवर ब्लिसफुल, सिंगुलर, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस।